100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Vaishnavi.
Namaskar, Abhishek.
And we start off with the news headlines. Election Commission announces schedule for assembly elections in four states of Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal, and Union Territory of Puducherry. Single-phase polling to be held in Assam, Kerala and Puducherry on the 9th of April. Tamil Nadu to also witness single-phase polling on the 23rd of April. Two-phase voting will be held in West Bengal on the 23rd and 29th of next month. Counting of votes in all four states and one union territory to be held on the 4th of May. Total 17.4 crore people eligible to vote in elections to five assemblies with 824 constituencies. Voting to be held at 2.19 lakh polling stations across four states and one union territory. 25 lakh election officials to be on duty. And the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar on special intensive revision says, pure electoral rolls form bedrock of a democracy, stressing no eligible elector should be left out, no ineligible voter should be included. Well, those were the news headlines at this hour. Yes, listeners, and it's now time for a segment of Dateline India, which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Consumer Rights Day. Well, Vaishnavi, have you ever paused for a second and thought about this? From the morning cup of chai to booking a cab to ordering groceries online late at night, what is the one thing connecting all of us?
अभिषेक, हम कुछ न कुछ रोज खरीदते ही रहते हैं और जिस क्षण हम कुछ खरीदते हैं हम उपभोक्ता बन जाते हैं. जब हम कोई उत्पाद या सेवा खरीदते हैं तो क्या हमारी जिम्मेदारी केवल भुगतान करने की होती है या हमारे पास ऐसे अधिकार भी होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं?
Yes, well, Vaishnavi, the answer might surprise our listeners. Every single consumer has powerful rights, rights that ensure fairness, transparency and protection in the marketplace.
और हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, एक ऐसा दिन जो लोगों को ये याद दिलाने के लिए समर्पित है कि उपभोक्ता असहाय खरीदार नहीं है बल्कि वे अर्थव्यवस्था में सशक्त भागीदार है.
Yes, but I have a very interesting question, Vaishnavi. But why March 15? Why? Because on this very day 1962, consumer rights were formally recognized at the global level when the idea of protecting consumers was brought into the spotlight.
और श्रोताओ, आज दशकों बाद भारत उस सोच को उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ा रहा है. क्या आपने कभी ऑनलाइन या कुछ खरीदा है और बाद में भुगतान करते समय छिपे हुए कुछ शुल्क पाए हैं या शायद आपको कुछ ऐसा उत्पाद मिला हो जो वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पाद से बिल्कुल अलग दिखता हो?
Yes, and if that has ever happened to you, you're not alone. These situations exactly why strong consumer protection systems are essential, and India is actively strengthening these protections.
आज भारत एक ऐसे उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में काम कर रहा है जहां निष्पक्षता और पारदर्शिता दोनों को सर्वोपरि माना जाता है. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नैतिक और जिम्मेदार तरीके से काम करें, ये सुनिश्चित करने के लिए नए मानक और रूपरेखाएं लागू की जा रही हैं.
Yes, and for example, online marketplaces must clearly disclose product details, price breakdown, seller information, country of origin, return and refund policies, and all of this ensures that consumers know exactly what they are paying for.
अभिषेक, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रामक विज्ञापनों, छिपे हुए शुल्कों, नकली उत्पादों और अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटने के लिए कड़े नियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं.
Yes, this Vaishnavi means that the digital marketplace is becoming more transparent, accountable and consumer friendly. And let's suppose you order a smartphone online. Earlier, you might have seen a low price initially, but during checkout, extra fees suddenly appeared, isn't
it? बिल्कुल, बिल्कुल. आज सख्त उपभोक्ता अधिनियमों का उद्देश्य भ्रामक मूल्य निर्धारण या छिपे हुए खर्चों को रोकना है, जिससे खरीदारी की प्रक्रिया कहीं अधिक स्पष्ट और निष्पक्ष हो जाती है. क्योंकि मूल विचार सरल है, जब उपभोक्ता बाजार पर भरोसा करते हैं तब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है.
Yes, but Vaishnavi, India's consumer protection journey has come a long way, and from awareness campaigns like Jago Grahak Jago to digital complaint platforms and stronger laws, the country is building a system where every consumer has a voice.
तकनीक लोगों के लिए शिकायतें दर्ज करना, शिकायतों पर नजर रखना और अन्यायपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ न्याय पाना आसान बना रही है. मूल विचार स्पष्ट है, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण केवल उत्पादक और व्यवसायों से ही नहीं होता जब बल्कि जागरूक और सशक्त उपभोक्ताओं से भी होता है।
Yes, and so the next time you buy something, whether it's a packet of biscuits from a neighborhood store or a gadget from an online marketplace, ask yourself, do I know my rights as a consumer? Because when consumers are informed, markets become fairer, businesses become more responsible, and the entire nation moves forward with confidence. And that is the spirit of World Consumer Rights Day.
ये दिन हमें एक सशक्त सत्य की याद दिलाता है। बढ़ते भारत के बाजार में उपभोक्ता कमजोर नहीं है, उपभोक्ता जागरूक, सशक्त और सम्मानित है। और ये वे बात है जिस पर हर भारतीय गर्व करता है।
And because Vaishnavi, we all buy things in our daily lives, from groceries and clothes to gadgets and online orders, that automatically makes each one of us a consumer. Since we're all part of a consumer club, today is a special day for each one of us.
जी बिल्कुल सही कहा अभिषेक, जब खरीदार गुणवत्ता की मांग करते हैं तो बाजार अधिक निष्पक्ष और जिम्मेदार बनते हैं। इसलिए एक तरह से हर जागरूक उपभोक्ता एक बेहतर अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देता है और यही विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की भावना है।
Yes, because the smart consumer doesn't just buy, they compare, question, verify and then decide wisely. So we wish you a happy World Consumer Rights Day.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
The Andhra Pradesh government has introduced a new initiative to bring the traditional food culture of tribal communities into the mainstream through a millet-based menu titled Araku Kouni. And Chief Minister N. Chandrababu Naidu launched the menu during the 6th Collectors Conference held at the Secretariat in Velagapudi on March 12th.
The Araku Kouni menu draws inspiration from the indigenous food traditions of tribal communities in Araku Valley, located in Allur Sitaramaraju district. Known for its rich tribal culture and natural farming practices, the region produces a variety of millet cultivated without chemical fertilizers or pesticides. Araku Kouni presents a range of traditional millet-based dishes that have been part of the daily diet of tribal communities for generations. The menu includes korra paisam made from foxtail millet, ragi chapati prepared with finger millet, tamala puluhara using little millet, kantla ambali, a nutritious porridge made from bajra, along with corn vada and tuldar curry. These recipes were sourced directly from local tribal communities and adapted for wider consumption while retaining their original flavor and nutritional value. The initiative was led by the district administration with the support of tribal Anganwadi workers, the Indian Culinary Institute in Tirupati and the State Tourism Department. Experts documented the recipes along with their nutritional content, calorific values and health benefits. The Andhra Pradesh Tourism Development Corporation plans to introduce the Araku Kouni menu at Harita restaurants across the district and gradually expand it to other tourism centers in the state. Officials say the effort is expected to promote millet consumption, highlight the culinary traditions of tribal communities and create new market opportunities for farmers cultivating traditional millets in the Araku region. Allu Murali फॉर परिक्रमा, आकाशवाणी न्यूज, विशाखापट्टनम।
अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर की ओर जहां मूर्ति नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा होती है। जी हां, झारखंड के पलामू स्थित मोहनलाल खुर्जा पार्वती पार्क में पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर की स्थापना की गई है, जो पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक ज्ञान का अनूठा केंद्र है।
दुनिया भर में आपने देवी देवताओं के कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन झारखंड के पलामू जिले के डाली में एक ऐसा अनोखा मंदिर बना है जहां प्रकृति ही ईश्वर है। पर्यावरणविद डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल की संकल्पना से साकार हुआ है पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर।
यह मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाले पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन का बैंक है और पर्यावरण चेतना का सबसे बड़ा केंद्र है। यह मंदिर आज दुनिया को नई राह दिखा रहे हैं। यहाँ पत्थर की मूर्ति के जगह पर पर्यावरण धर्म के 8 मंत्रों की गूंज है। यहाँ का हर पौधा आशीर्वाद दे रहे हैं और हर वृक्ष रक्षक के रूप में खड़े हैं। अमेरिका से आए जॉर्ज जेम्स और कर्नाटक से पांडुरंग ने इस मंदिर को देखा तो उन्होंने भी माना कि प्रकृति ही असली परमात्मा है।
इस मंदिर का उद्घाटन वनराखी मूवमेंट के 50 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हुआ। उद्घाटन करने पहुँचे अमेरिका के प्रख्यात पर्यावरणविद जॉर्ज जेम्स और एपिको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े भी यहाँ की व्यवस्था देखकर दंग रह गए। यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र स्थापित हैं, जो मनुष्य को वृक्षों की रक्षा और जैविक जीवन शैली की प्रेरणा देते हैं।
ज्ञान मंदिर का उद्घाटन किया जॉर्ज जेम्स जी ने, अमेरिका से आए, और वो बहुत खुशी है कि जयसवाल जी ने जो दुनिया का पहला ज्ञान मंदिर का शुरुआत की, क्योंकि बोगुणा जी जो है सुंदरलाल जी उनके गुरु है, उनके लिए ये जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है इससे बहुत खुशी हुई है।
मंदिर के चारों ओर फैला जैविक उद्यान और थाईलैंड के आम जैसे औषधीय पौधे इसे एक जीवंत पाठशाला बनाते हैं। यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथों में पौधे लेकर और उन्हें बचाने का संकल्प लेकर निकलते हैं। परिक्रमा के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
Yes, and amid concerns over supply disruptions triggered by the West Asia crisis, researchers at CSIR National Chemical Laboratory Pune have derived that dimethyl ether, DME, is a potential indigenous alternative to liquefied petroleum gas, LPG, particularly for domestic cooking fuel. And the researchers have developed a patent-protected DME production technology using an indigenously developed catalyst that enables efficient conversion of methanol to DME. We have more from a Pune correspondent.
CSIR NCL, in partnership with a processing engineering collaborator, is prepared to advance the technology to an industrial-scale demonstration facility capable of processing 2.5 tons per day within a time frame of 6 to 9 months. This innovation facilitates the effective conversion of methanol into DME and has the potential to significantly enhance India's energy security. As reported by CSIR NCL, the recently created process employs a locally sourced catalyst that aids in the transformation of methanol into DME under relatively moderate operating conditions. Crucially, this technology generates DME at approximately 10 bar pressure, enabling it to be directly filled into standard LPG cylinders. This alignment with current LPG infrastructure greatly enhances the fuel's practicality. Researchers have successfully showcased the technology at a pilot scale of 250 kg per day, underscoring its preparedness for subsequent industrial implementation. Dimethyl ether burns much more cleanly compared to the traditional fuels. Researchers indicate that DME produces minimal amounts of soot, nitrogen oxide, sulfur oxide, and particulate matter. Additionally, its thermal efficiency is on par with that of conventional fuels, rendering it appropriate for both domestic cooking and industrial heating purposes. If the demonstration unit proves successful, it could lead to the establishment of a commercial-scale facilities with capacities between 100 and 500 tons per day. At present, India imports over 80% of its fossil energy needs, thus exposing the nation to risks from geopolitical instability and fluctuations in global prices. In this context, DME presents a clean-burning synthetic fuel alternative that can either supplement or partially substitute LPG, thus decreasing dependence on imports. For Parikrama, Manoj Kshirsagar, Pune.
Yes, and now we have reached that section wherein we remember all those greats who are associated with today's date. And we start off with G. Aravindan or Govindan Aravindam, who passed away on this day in 1991. He was Indian film director, cartoonist, screenwriter and musician, and one of the pioneers of parallel cinema in Malayalam. He was known for his unorthodox way of filmmaking. He changed his cinematic forms consistently and experimented in storytelling without regular narrative styles. He studied at the Karapura NSS School, English High School and CMS College in Kottayam, and in 1955 graduated in botany from the University of College Trivandrum. Before venturing into films, he was an established cartoonist. He had also worked in theatre and occasionally directed music for other filmmakers. And the Government of India awarded him the fourth highest civilian award, the Padma Shri, in 1990.
बिहार के इतिहास, संस्कृति और साहित्य को अपने लेखन के माध्यम से जीवंत रूप देने वाले विद्वान लेखक राधा कृष्ण चौधरी की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने इतिहासकार, साहित्यकार तथा शिक्षाविद के रूप में अपनी खास पहचान बनाई। वे बिहार के इतिहास और मिथिला की सांस्कृतिक परंपराओं पर गहन शोध के लिए जाने जाते हैं।
विलियम जेम्स एडम्स जूनियर वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1975, नोन प्रोफेशनली एज विल आई एम। He is an American rapper, singer, songwriter and record producer. He is the frontman of the musical group Black Eyed Peas, which he formed with fellow rappers. And let's listen in to one of his hit tracks.
got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight.
आज पुण्यतिथि है. आसमान की ऊंचाइयों को छूकर इतिहास रचने वाली भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल की. उनका जन्म 1914 में हुआ था और मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने विमान उड़ाकर एक नया इतिहास रचा था.
Yes, and M. Krishna Rao Indira passed away on this day in 1994. She is a well-known Indian novelist in the Kannada language. Her works include Fanayama, which won various awards, and she began writing novels at the age of 45. And some of her novels were made into movies. And her most well-known work is, however, Fanayama, which was released in 1976. And Fanayama is a novel based on the life of a child widow whom Indira knew during her childhood. Yes, Vaishnavi.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और अभिषेक को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार.